نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الوجود والبدن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بانتہا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ نعمت عظیم بخشی کہ اس رات میں ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق تھی. اور جیسے میں دیکھ رہا ہوں، بے انتہا اشتیاق نظر آتا ہے مجھے اور شوق نظر آتا ہے اس مجلس میں. کوئی بوریت نظر نہیں آ رہی، اکتاہٹ نظر نہیں آ رہی، مجبوری نظر نہیں آ رہی. ہر شخص اتنا کین اور مشتاق نظر آتا ہے کہ الحمدللہ دل سے اللہ کی بے انتہا تعریف نکلتی ہے. اللہ پاک کیسے انسانوں کو جمع کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ واقف ہیں کہ آج کی مجلس جو ہے بہت سادہ ہے، کوئی خاص ایسی چیز نہیں جو عام مجلس میں ہم سنتے ہیں. صرف ایک ہی چیز ہے، جیسے کہ آپ نے شاید اعلان بھی سنا ہوگا، نمازوں کے بعد بھی ہے، پوسٹ بھی دیکھے ہوں گے، کہ صرف اور صرف ہم نے بیٹھ کے اللہ کا نام لینا ہے. تو سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ، حالانکہ لوگ تو شاید مجھے نہیں جانتے ہیں، کہ بہت سے پہچانتے بھی نہیں، لیکن اللہ کے نام میں کتنی کشش ہے کہ کیسے آدمی کو جمع کر دیتا ہے الحمدللہ. اور یہ سب محبت آپ کے چہروں سے ٹپکتی نظر آتی ہے الحمدللہ، اور شوق و اشتیاق جو نظر آ رہا ہے، یہ سب اس نام کی برکت ہے اللہ کے فضل سے. اور میرا شوق، میرا ذہن تو یہی کہتا ہے الحمدللہ، کہ جب اللہ کے نام لینے کا آپ کے اور میرے دل میں اس کا تو شوق اور ذوق اتنی محبت نظر آ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے گا انشاءاللہ. اور یہ ہمیں چاہیے اللہ کے فضل سے. تو سب سے بڑی بات اور خوشخبری یہ کہ اب تک جو ہم نے غفلت کی زندگی گزاری ہے، جو گناہ کیے ہیں، یقیناً کیے ہیں، اپنے بارے میں عرض کرتا ہوں، تو اللہ پاک نے بہت ہی قیمتی موقع میں دیا ہے، بہت ہی قیمتی موقع. سبحان اللہ، اس طرح اللہ تعالیٰ رحمتیں کرتے ہیں، جہنم سے جاتے جاتے انسان کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت بہت، بالکل نہ سوچیں کہ میں نے اتنا سفر کیا ہے، میں اتنی دور سے آیا ہوں، میں نے قربانی دی ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ سوچیں کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا ہے، کتنا فضل کیا ہے. وقت تو گزر جاتا ہے دوستو، کوئی 80 سال کا بھی ہوگا، کوئی 70 سال کا بیٹھا ہوگا، 50 سال کا بیٹھا ہوگا، 20 سال کا بیٹھا ہوگا، وقت رکا کبھی؟ وقت تو گزر جاتا ہے، یہ گھڑیاں گزر جاتی ہیں، لیکن جو تیری یاد میں گزرے سد حیات ہوتی ہے. جو گھڑی تیری یاد میں گزرے، ایک گھڑی جو اللہ کی یاد میں گزر جاتی ہے، وہ 100 سینکڑوں زندگی سے بہتر گھڑی ہوتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے بٹھایا ہے، تو اللہ سے دعا بھی یہ کریں سب مل جل کر کہ اللہ پاک اس مجلس کو مفید بنا، اور ہم سے ایسی باتیں سننے کی اور کہنے کی توفیق نصیب فرما کہ الحمدللہ یہ مجلس میں ایسی چیز لے کر جائیں، ایسی چیز لے کر جائیں الحمدللہ، کہ وہ چیز ایسی ہو کہ مریں تو خوشخبری ہوں، قبر میں جائیں تو جنت کے نظارے ہوں، آخرت ہو تو ہنستے ہوئے جنت میں چلے جائیں. بس یہ عطا فرمانے اللہ تعالیٰ اس مجلس میں، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے دوستو. اور سب بھائی اس مجلس میں پہلے یہ نیت کر لیں الحمدللہ جو بھی اللہ پاک ہمیں سنائیں گے پہنچائیں گے بزدل بن کے نہیں بیٹھنا, کوڑ نہیں ہونا, بلکہ برے بن کے بیٹھیں گے انشاءاللہ اس پہ ہم عمل کریں گے. پکی بات ہے, بزدل تو کوئی نہیں, ماشاء سارے بادر بیٹھے ہیں, چلو ٹھیک, بادر بن کے بیٹھو, بزدل والے نے کام چلنا, جوان بنے الحمدللہ, اللہ جو کہے کہ کریں گے انشاءاللہ, اس لیے بلائے تو ہم یہ بھی شکر نہ کریں اللہ تعالیٰ کے, ہم یہ کام نہیں کریں گے, ضرور کریں گے, کیا کام, کچھ بھی نہیں کرنا, کیا ہے ہم نے بھائیو. دیکھیں قرآن حکیم میں علماء کرام موجود ہیں, سارے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ. بزرگان دین جی کہتے ہیں کہ قرآن کا جو خلاصہ ہے, سارے مضامین کا جو نچوڑ ہے, اللہ نے مختلف پہرائے کے اندر قرآن میں بیان کیا ہے, مثالوں کے ساتھ بھی, قوموں کی مثالوں کے ساتھ بھی, جنت کے حوالوں کے ساتھ بھی, دوزخ کے بیانات کے حساب سے بھی, سب کچھ اللہ نے جو چیز بیان کی ہے قرآن کے اندر وہ ایک ہی ہے. اب وہ کیا ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ, یہ خلاصہ ہے قرآن کا. میری نافرمانی مت کرو, میری نافرمانی سے بچنا, یہ ہے پورا قرآن کی دعوت دوستو. اور آج ہم نے بھی یہی دعوت نہیں ہے ایک دوسرے کو, میں تو اس قابل نہیں کہ آپ کو دعوت دوں, میں تو خود آپ سے اصلاح کرانے آئے ہوں, اللہ کے فضل سے کہ میری اصلاح ہو جائے, تو میں تو آپ سے زیادہ محتاج ہوں, آپ تو پھر بھی نیک آدمی ہیں. آج ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ بھائی اللہ نے پورے قرآن میں پوری کتاب اللہ کی کہہ رہی ہے ہمارے سے, اور کس طرح کس طرح بیان کیے اللہ پاک نے کہ بھائی نافرمانی مت کرو, گناہ مت کرو. کیوں کہ گناہ کا جو رزلٹ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن بتایا ہے, بہت ہی بھیانک ہے, بہت ہی خطرناک ہے, اور ہمیشہ کے لیے ایسی آگ ہے, وہ ایسی آگ ہے, ایسے عذاب ہیں اللہ پاک نے قرآن بتایا ہے کہ جس کا آدمی یہاں سوچ کیا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ کیسی آگ ہوگی. کروڑوں گنا, کروڑوں گنا اس آگ کو ہم گرم کر لیں جو آگ ہمارے پاس ہے, اس سے بھی زیادہ تپش ہوگی. ساری دنیا کے ہم اندھیرے جمع کر لیں, ساری دنیا کے اندھیروں کو جمع کر لیں, تہ بتر تہ بتر تہ بتر اندھیروں کو جمع کر لیں, اللہ کی قسم اس دوزخ کے اندھیرے کا پاسنگ بھی نہیں ہے اتنا اندھیرا. آپ خود سوچیں اتنی آگ, اتنا اندھیرا, کوئی نہیں, ہم مستقل, نہ کوئی چیخ نہ کوئی پکار, اور یہی زندگی, یہی بالکل حالات. بتائیں کتنی اچھا بات ہے, کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم ابھی یہ, اللہ تو یہ چاہتا ہے ابھی ہم بیٹھے بیٹھے کہہ دیں کہ مولا واقعی صحیح بات ہے, قرآن بھی کئی دفعہ پڑھا, پڑھتے رہتے ہیں, اور پھر بھی ہم اس جگہ پہ جانے والا کام ہم سے ہو جاتا ہے, اللہ پاک آج وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ کام نہیں کریں گے, کرتے ہیں بھائیو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریم ایسے رحیم ایک انسان کے اس وعدے پر, اس کہنے پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انشاءاللہ میری رحمت تیرے ساتھ ہے, ان اللہ محموس نہیں, اللہ تعالیٰ فکر نہ کرو, تو نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں, میری رحمت تجھے انشاءاللہ یہ کام کرا کے ہی رہے گی. کمزور تو کوئی نہ بات, کیوں بھائی سمجھ نہ بات, ہمت ہے نا, ورنہ جہنم کی آگ. یہ سب باتیں اللہ کرا رہے ہیں, صحیح بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کر رہے ہیں الحمدللہ. نافرمانی نہیں ہونی چاہیے, اللہ سوال ہی پیدا نہ, ایمان والا اللہ کی نافرمانی کرے کیسے ہو سکتا ہے. چیتانو کو 10,000 سال سکس پتہ کتنے کروڑ اس نے سجدے کیے تھے, عبادتیں کی تھی, اور نافرمانی اس نے ایک دفعہ کی تھی. یہ قرآن مثال دی, ہر مثال اللہ نے دی ہے, نافرمانی کی مثال دے رہا ہے. اپنے سجدوں پہ نہ جاؤ, نمازوں پہ نہ جاؤ, قرآنوں پہ نہ جاؤ, عمروں پہ نہ جاؤ, رمضانوں پہ نہ جاؤ, اللہ پاک کہتے ہیں یہ ایک طرف. سوال یہ پتا ہے کہ تو جرت کیسی ہوئی تجھے کہ تو اپنے رب کی ایک بات مانے نا, بولے سبحان اللہ, وہ تیری حیثیت کیا ہے. پھر اس کی مثال اللہ پاک نے دی شیطان کی, سب مثالیں دی ہیں, تو ہے کیا اتنا بڑا, سب صفت اس میں موجود تھی, اس نے ایک हम जो कहने बैठे जी मेरे तो नमाज पढ़ लेता हूँ, कोई फर्क पड़ता है गुनाह से, क्या होता है? इतनी सी बात नहीं मैंने गाली दी है, इतनी सी बात में मैंने थोड़ा एक दफा झूठ बोले, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? वक्त यह है कि जो अल्लाह कह रहा है हमने उसकी नाफरमानी की है, उसकी हुक्मदूली की है। कैसे जुरत हो गई, कैसे हिम्मत आ गई, कैसी ये ताकत आ गई उसकी जमीन पे, उसका खड़ा होके उसका ईमान देने के बाद कुरान बगल में दबा के हम ऐसी बात करें कि अल्लाह कह रहा है ये मत करो, मैं कोई मैं तो करूंगा। ऐ तो होगी जनाब, ऐसे बगैर तो मेरा कम ही नहीं चलना, ये तो इस दुनिया की मजबूरी है, मैं तो हराम ही खाऊंगा, मैं तो ये काम ही करना है, झूठ बोलने के बगैर तो मेरा काम नहीं चलेगा। राजिक वो, देने वाला वो, हिसाब करने वाला वो, और हम कहें कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, ये तो अच्छी बात है। तो मेरे भाइयों, ये जो बात है कि अल्लाह सुभान व तआला ने मैं खबरदार जिसको मैंने हराम कह दिया वो असल तक हराम ही रहेगा, सारी दुनिया उसके फायदे गिनाती रहेगी आपको, ऐसे हो रहा है ना भाई, सारी दुनिया फायदे गिनाएगी आपको, ये बहुत जरूरी है, अब जमाना आ गया है, अब ये हो गया है। तो मैं नहीं, कभी नहीं होगा, जो कुरान में मैंने फैसला कर दिया फैसला वही चलेगा, बदल नहीं सकता कोई, ये हम आदि है। कोई बहाना नहीं कि मैं इस कंट्री में आ गया, मैं उस कंट्री में, बिल्कुल कोई बहाना नहीं। अल्लाह ताला कहता है कि जहां मोमिन जाएगा उसका ईमान जाएगा, जहां ईमान जाएगा वहां मेरी रहमत जाएगी, बचेगा बचाऊंगा, कहीं नहीं अल्लाह रिस्ट्रिक्शन दी कि यहां जाओ फलां जाओ, उस दुनिया अल्लाह की है, जाओ जहां जाओ, जाओ रिज़्क तलाश करो जाओ, लेकिन मेरे दीन से गाफिल मत होना जो मैंने कहा है उसको कायम रहे उस पर। बहुत जल्दी तुमने मेरे पास आ जाना है, इस तो बहुत मुख्तसर चीज है। जैसे अभी मौलाना बता रहे थे, मैं बड़ा हैरान हुआ, कहते हैं 20 साल पहले की बात है और 20 साल ख्वाब लगे रहे हैं, 20 साल मुझे भी ख्वाब लगते हैं, जो मैंने बात है 20 साल गुजर भी गए, ये आते थे हम यहां, अब जितकर हम यहां बैठे हैं, ये ख्वाब है दुनिया। आज मौका अल्लाह पाक दे रहे हैं, याद रखें, बहुत जबरदस्त मौका है मेरे आपके पास। कोई ये ना कहे मैं जवान हूं, कोई मजबूरियां खत्म कर दो, अगर किसी मामले में भी कोई रुकावट आ रही है और हराम के रास्ते शैतान खोल रहे हैं, आज वादा करें कि सारे रास्ते शैतान के खुले हुए हैं, मैंने तो एक ही रास्ता पकड़ना है, एहदिनस सिराते मुस्तकीम। सारी चीजें मैंने कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, भूखा मारा मर जाऊ, वो हंसेंगे हंसने दे, तमाशा उड़ेगा उड़ने दे, मैंने उस कानून को नहीं तोड़ना छोड़ना जिसको अल्लाह ने बयान फरमाया। तो अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया है कि नाफरमानी से बचो, जरा मैं भी देखूं और आप भी सोचें कि आज दुनिया में क्या हाल है, नाफरमानियों का हम कितनी करते हैं। कोई भी ऐसी जगह हमने नहीं छोड़ी, माशी हो, घर की हो, बाहर की हो, दुकान की हो, कारोबार की हो, मिलन मिलान की हो, दीन की हो, जहां हम बकवासबाजी ना करते हो, जहां हम गुनाह ना करते हो। ये बात सुनो, कैसे काम चलेगा ऐसे, और सेटिस्फाई भी है, जितनी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात सेटिस्फाई भी है, मुतमईन में अपनी बात से आंख खुलें, कोशिश करें, देखें। जब इंसान बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए, या उसको पता चले टीबी हो गई है, या कोई मुझी मर्ज आ गया है, फोन क्या करता है? अस्पताल की तरफ भागता है, डॉक्टर की तरफ भागता है, परेशान होता है, दवाई की तरफ भागता है, मैं इलाज कराऊं, मर ना जाऊं, इलाज कराऊं। उसकी बात इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले मामूली दे, आप नजला ले, नजला। नजला क्यों होता है? नजला क्यों हो जाता है आदमी को? छींकी क्यों मारता है? सबसे पहले जो बात पहुंचेगी जहन में डॉक्टर की समझ जाएगी, वो ये देखेगा कि नजला होने की रीजन क्या है, वजूहात क्या है इसको नजला हो, एलर्जिक है, फ्लू है, या कोई जमाने के आबो हवा है, या क्या चीज है। जब वो उस रीजन को पालेगा तो उसके बाद वो उसको दवा देगा, ऐसे ही ना भाइयों, जब तक उस रीजन को नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि हर चीज के पीछे कोई रीजन तो होती है नहीं होती है, हर बीमारी के पीछे कोई रीजन तो है ना, हर बात के पीछे कोई रीजन तो है ना, कोई वजह तो है ना जिसकी वजह से ये चीज हुई है। आओ मेरे भाइयों, अल्लाह पाक तो कह रहे हैं मेरी फरमाबरदारी करो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो, हराम ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो, इन तमाम चीजों के बाद अल्लाह सुबहाना ताला फिर उनकी इफेक्ट बता रहे पूरे कुरान में, ये अजाब हैं, ये हालात हो जाते हैं इंसान की दुनिया में, इस तरह की मौत होगी, ये सब हमारे सामने चीजें पहुंच रही हैं। और अल्लाह ये भी बता रहे हैं कि अगर तुमने इसको एक गुनाह को तर्क करते हो तो मेरा ये इनाम आ जाता है, मेरा तुम पे ये फजल आ जाता है, तुमने आज मेरे डर से शराब छोड़ी, तुम्हें शराब तहूर दूंगा आखिरत के अंदर, तुमने आज एक लड़की को देख के आंखों को झुका लिया, बेहतरीन हूर दूंगा आखिरत के अंदर। अल्लाह सुबहाना ताला ने हर नाफरमानी को छोड़ करने पर इनाम रखा है, साथी इनाम रखा है, ये दूंगा, ये पहुंचेगा। इसी तरह हर नेकी करने पर अल्लाह ने इनाम रखा है, ये नेकी करेगा तो ये इनाम दूंगा, वो इतना गुना बढ़ा दूंगा। और उसके बावजूद भी हम गुना करें, फिर गुना करें, फिर भी नाफरमानी करें, तो वजह तो होगी ना कोई भाई, ना हो नहीं सकता वजह ना हो। मिसाल कि आप बैठे हैं, इंसान बैठा है, इसके सामने दो खाने पेश किए जाते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सजावा है, डेकोरेट है, खुशबू आ रही, गर्म गर्म भाप निकल रही है, गर्म गर्म खाना है, और दूसरी तरफ बहुत ही रटन सड़ा हुआ बदबूदार गंदा बदबू आ रही है, कीड़े चल रहे हैं, दूसरी प्लेट में वो खाना पड़ा है, वो आदमी इस खाने को छोड़कर उस खाने को पसंद कर रहा है, उस खाने को खा रहा है, और हम बैठ के देख रहे हैं। आप खुद सोचें हम क्या कहेंगे उस शख्स के बारे में, यकीन या तो ये दीवाना पागल है, इसमें अकल नहीं, शऊर नहीं है, इसको डॉक्टर पास ले जाओ, क्या हो गया इसको, इतना खूबसूरत खाना छोड़ के इतना खाना खा रहा है, यकीन इसको कुछ है, सारे सोचने पड़ जाएंगे, ये अल्लाह इसको कुछ तो करो, इसका तो इलाज करो, क्या कर गया, किस किस्म का इंसान है। सही बात है, तो क्या आज हमें समझ नहीं आता क्या, जन्नत को छोड़कर, गोरों को छोड़कर, अल्लाह के कुर्ब को छोड़कर, अल्लाह की माफ़त को छोड़कर, अल्लाह के प्यार को छोड़कर, और हम क्या खा रहे हैं, जहन्नम की आग खा रहे हैं, जहन्नम के गारे पेट में डाल रहे हैं, सजाओं को पसंद कर रहे हैं। तो क्या कहेगा दिमाग, पागल है ये नहीं, हम बेवकूफ है ये नहीं, दिमाग खराब है ना हमारा, कोई हो सकता है, सभी लगे हैं, इस कदर हावी है ये चीज हमारे पे, बिल्कुल पागल हो चुकी है दुनिया से, नाफरमानी की इंतहा में देखेंगे दीवाने हो गए लगे, क्या वजह हो सकती है इसकी, क्यों कर रहे हैं ऐसा। अल्लाह सुबहान तआला ने इसकी वजह बताई है दोस्तों, कि अल्लाह का तसव्वुर में तुम इसकी वजह बता देता हूं, क्या है, कुरान ने बताया, तुम्हें याशु अल जिक्र रहमान कुरान कहते हैं, कि जब बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, अंधा हो जाता है, याश कहते हैं बिल्कुल यानी उसको पता ही नहीं है क्या चीज जिक्र, इसकी सिफत क्या है, उसकी वक्त खत्म हो गई, तुम्हें याशु अल जिक्र रहमान पता ही नहीं, अल्लाह सुबहाना तआला नक़य्यद लहु शैतान, अल्लाह कहते हैं जब इसका यह हाल है कि जब मेरे जिक्र को उसको पता ही नहीं, जिक्र से बिल्कुल गाफिल हो चुका, यानी अंधा हो जिसका होता ना आदमी, उसको नजर ही नहीं आ रहा कि है भी कोई चीज नहीं है, जिक्र की कोई अहमियत है, जिक्र का कोई फायदा है, जिक्र की कोई वैल्यू है। जब इंसान की ये कैफियत हो जाती है तो अल्लाह ताला कहता है फिर मैं क्या करता हूं, नक़य्यद शैतान लहु शैतान, उस पर मैं शैतान को मुसल्लत कर देता हूं, और जब शैतान उसे मुसल्लत हो जाता है तो वो लहू करीन, और उसका हाल जो है कि मुकम्मल दिन रात जहां भी है, जाग रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, मुकम्मल उसके ऊपर सवार हो चुका होता है। तो क्या फिर भाई शैतान हमें हलाल काम कराएगा, क्या हम मस्जिद में लेके जाएगा, क्या हम अच्छे काम कराएगा, हो सकता है सारी वजह जो इस نافرمانی کی وہ کیا ہے کہ شیطان نے ہمارے پر قبضہ کر لیا ہے. اور اس کی ریزن نے کیا بتائیے, میں یہاں شو ذکر میں ہوں, جس وقت یہ غافل ہو جاتا ہے انسان, اب ہم اس چیز کو اپنے آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں, ٹول رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ذکر کتنا ہے. بڑا بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کی ہے اللہ پاک میں, بالکل سیدھی سادھی, کتنا ذکر کرتے ہیں بھائی ذرا بتانا, ہاتھ کھڑا کر کون آدمی کتنا ذکر کرتا ہے, اور جو ذکر نہیں کرتا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن غلط ہے کیا؟ نعوذ باللہ. اللہ کہتا ہے مسلط کر دیتا ہوں اس کے اوپر میں شیطان کو, اسی شیطان کے ساتھ گھر جا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, مسجد میں آ رہا ہے, باہر جا رہا ہے, کچھ عبادت کر رہا ہے, حرام کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, سب کچھ کرنے کے بعد اپنی عبادت کو بھی ضائع کر رہا ہے. اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے بڑے بڑے اعمال جو ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی, ویلیو ہی نہیں ہے. جیسے آج ہماری ایک بات ہے کہ اللہ اکبر, جو سب سے خوبصورت بہترین چیز اللہ نے دی ہے, اتنی بڑی چیز اللہ نے دی ہے, اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں قرآن میں اتنا بڑا اور پیارا عمل ہے یہ کہ اگر کوئی بندہ یہ عمل کر لے ایمان والا تو میں اس کو کیا کرتا ہوں, اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, یحبب کل, اللہ کہتا ہے اسے پیار شروع کر دیتے ہیں اللہ پاک, اللہ کہتے ہیں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں اس عمل سے. وہ کیا عمل ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, اللہ نے وہ ہمارے گھروں میں باہر زندگی میں وہ عمل ہے, وہ کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کل ان تم تحب اللہ فتبعونی یحبکم اللہ, قرآن کہتا ہے. چہرہ ہو تو نبی پاک مطابق ہو, لباس ہو تو ویسا ہو, شکل ہو تو ویسے ہو, کام ہو تو ویسا ہو, چلنا ہو تو ویسا ہو, گھر میں جانا ہو تو ویسا ہو, کھانا ہو تو ویسا ہو, اس کو کہتا ہے مکمل اتباع. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نبی بھیج رہے ہیں بس آپ نے یہ کام کرنے کی جس نے نماز بتا دی اس پہ دیکھیں باقی چھوڑ دیں اس کو, نہیں نہیں, سٹیپ بائی سٹیپ. کوئی زندگی کا ایک چیز بھی ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نبی کے مطابق نہ ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, مثال دی ہے, مثال دی اللہ پاک نے کہ جب اس کی نقل کرتے رہو گے کسی چیز میں تو تمہیں برکتیں آتی رہیں گی, زندگی سنورتی رہے گی, جنت میں پہنچتے رہو گے, کوئی شیطان نزدیک نہیں آئے گا تمہارے. ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں, بھرا ہوتا ہے ٹوائلٹ شیطانوں سے, بھرا ہوتا ہے, شیاطین سب وہیں ہیں, ہمارے گھر کے سب سے زیادہ شیاطین وہیں ہوں گی, ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں, عورتیں بھی جا رہے ہیں, مرد کہاں, ہمارے طلاقیں کیوں ہوتی ہیں, گھروں میں لڑائی کیوں ہوتی ہیں, فسادات کیوں ہوتے ہیں آپس میں. میں تو کہتا ہوں شاید 99 کیس ہی یہی ہے کہ گھروں میں میاں بیوی کی بنتی ہی نہیں. پیش ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں, ہم تو سورت سلام پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہو, اتباع رسول کرتے ہو. کی محمد سے فاتون تو ہم تیرے ہیں, کہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں. سارے دین کا ویلیو جو ترازو ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک کی اتباع ہے. جب ہمیں اتباع کا پتہ ہی نہیں, شوق ہی نہیں, ویلیو نہیں, احساس ہی نہیں, اس کے مقابلے میں غیروں کی باتیں بہت پسند ہیں, باقی چیزیں بہت پسند ہیں, اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. ایک امامہ کہہ دو تو پسینہ نکل جاتا ہے, داڑھی پوری رکھنے کو کہہ دو تو یہ کون سا دین ہے, پردے کا کہہ دو کہ ہم تو نہیں مانتے, یہ کیا بات ہے بھائی, یہ کون سا دین لے کے ہم چل رہے ہیں؟ فکر کی بات نہیں ہے, اللہ نے بتا دیا, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, اس کی علاج بتا دیا, وجہ بتا دی کہ اگر تم نے وہ کام کر لیا تو تم بالکل بہترین انسان بن سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے زیادہ کوئی ہوگا ہی نہیں اس زمین پہ جو اللہ کی نبی کی سنتوں سے محبت نہ کرتا, تمہارا ہر قدم اس پر اٹھے گا, اتباع سوچا سن مطابق تو زندگی بن جائے گی انسان, منافقت ختم ہو جائے گی, چکر بازی ختم ہو جائیں گی, دکھاوے ختم ہو جائیں گے, اصل عشق آ جائے گا اندر. جیسے ابھی نے دو مثالیں دی ہیں, ایک دو اللہ والوں کی, بالکل ایسی ہوتا ہے. اللہ والوں کی زندگی میں کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی, واحد چیز جو نظر آئے گی, عبادت سب کرتے ہیں, تہجدیں سب پڑھتے ہیں, زکات سب دیتے ہیں, صدقے سب دیتے ہیں, لیکن واحد جس چیز نے ان کو بزرگ بنایا وہ کیا چیز ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ان کی زندگی میں سنت قطع نہیں ہوتی, یہ دیکھیں گے آپ, سوال ہی پیدا نہیں. تو یہ بھی نہیں ہماری زندگی میں, برکت کہاں سے آیا بھائی, ہو कोई आमिल तो नहीं दे सकता। अब हम जा रहे हैं टॉयलेट में, तो तरीका पता नहीं है टॉयलेट में किस तरह जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, शैतान पकड़ लेते हैं। अब बच्चा बीमार, बीवी बीमार, घर में लड़ाई फसाद, बस मजे आ गए, आमिल आमिल आ रहे हैं, पैसे खींच रहे हैं। अब तेरे पे इतना जिन हो गया, तेरे फला पे इतना जादू कर दिया, तेरी सास ने किया होगा, तेरी नन ने किया, तुझे फला कर दिया, इसका तलाक दिया है, मैं इतना काम करूंगा। ये मैं तो कहता हूँ शायद इस मजे में कोई ऐसा नहीं होगा कोई जिसका आमिल दोस्त ना हो। क्यों, ये एक और अजाब है अल्लाह तआला का, ये एक और अजाब है इस चीज का कि तुमने मेरे जिक्र को तर्क किया है। तुम्हें शैतान बर्बाद करेगा, तुमने जिक्र रहमान को छोड़ा है और जिक्र शैतान को पसंद किया है, इससे बड़ा क्या नुकसान होगा। अल्लाह पाक ने कुरान में करा दोस्त मिसाल दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान रखो, अक्ल करो, अल्लाह तआला कहता है। क्यों बर्बाद होते हो तुम? ईमान वाला सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह की नाफरमानी करे अगर वो सेहतमंद है, किसी बीमारी में मुबतला नहीं है, कोई शैतान के अंदर उसके जमा नहीं है, वो एक झूठ भी उसके लिए पहाड़ नजर आएगा, कभी बोल ही नहीं सकता। ये मुतजाद है ईमान से, ईमान कभी ये कहने एक दावत देगा आपको कि ये तो झूठ बोल ले, तो गिबत कर ले, तो हराम खा ले, तो फला काम कर ले, लालच आ जाए, रे आ जाए, आ ही नहीं सकता। अल्लाह कहते यह लजीना मुस्कुल्ला, ये अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तआला कहते हैं अल्लाह इलाज बता रहे, जिक्र करो मेरा, ये कोई ऑप्शन नहीं है जैसे हम करेंगे नहीं करेंगे जी, फला जमात करेगी जी, फला आदमी करेगा, फला आदमी कर सकता है, हम तो जिए किसी यज़ीना मनु, जिसके अंदर ईमान है उसके लिए हुक्म है कि तू अल्लाह का जिक्र कर, ना तेरी तहरीक चलेगी, ना तेरा दीन चलेगा, ना तेरी तबलीग चलेगी, तेरा ना तेरा हदीस चलेगी, ना तेरा कुरान चलेगा, ना तेरा घर चलेगा, ना तेरी जिंदगी चलेगी। यज़ीना मनु, हर ईमान और मत पे लाजिम है कि अल्लाह का जिक्र करे। ये हुक्म है अल्लाह का नहीं है, हुक्म है भाई करेंगे सब, ऊंचा बोल रहे भाई, वरना दूसरा रास्ता है, मुझे बच के दिखा दोगे। कोई आदमी दवा कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल कि वो जिक्र ना कह जाए बिल्कुल ठीक, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गीबत नहीं करता, मुझे रिया नहीं, कुछ भी हो, कितना बड़ा चैलेंज है मेरा, फुआन चैलेंज करता, तस्वर भी ना करे, चल ही नहीं सकता उसका काम, उसमें बरकत आ ही नहीं सकती, वो आरजी नजर आएगी बरकत आपने, उसका सही फ्रूट नहीं मिलेगा आपको। वो कर रहा दीन का वो काम, लेकिन उसमें से वो फ्रूट नहीं निकलेगा, उसमें सुनत नहीं होगी, उसमें सुनत के फल ही नहीं निकलेंगे, चलत फिरत रहेगी, चलते फिरते बहुत मशहूरी बहुत होगी उस काम की, बहुत इतने लोग हैं जी फला हो गया ये हो गया, नहीं देखना ये है, बेशक पांच आदमी है उस तहरीक के अंदर, लेकिन सारे के सारे तबाह सुनत पे चलने वाले, वो तहरीक उस तहरीक से करोड़ों दर्जे बेहतर है जो हजारों लाखों आदमी है और जिनमें सुनत है ही नहीं, ड्रामा ही ड्रामा है। याद रखिए एक मियार अल्लाह ने दिया है कामयाबी का, तबाही रसूल, याद रखो कोई तहरीक कामयाब नहीं, उसमें कोई दस कामयाब उसमें सबसे पहले ये है, बेशक पांच आदमी है उस तहरीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, पांच आदमी हैं और वो सारे मुतब्बा सुन्नत हैं, शरीयत पे चलने वाले हैं, खौफ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर काम उसके मुताबिक उनकी जिंदगी का है, कोई कश्फ नहीं, कोई करामात नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, और एक तरफ लाखों की तहरीक है, बड़े बड़े मजमे निकल रहे हैं, फ्रंट निकल रहे हैं, और उसमें वो चीज नहीं है, और बाकी सब चीजें हैं, सब है बेकार है, वो बेकार है, बेकार है, बेकार है, बता रहा हूं ये कुरान कहते हैं, मरीज है, इलाज क्या है, मर्द ऐ औरतो तुम्हें लाजिम है तुम जिक्र करो, करेंगे भाइयों, ये दावत है आज की, ये आज की दावत है, जिसने इस दावत को कबूल कर लिया अल्लाह की कसम खाता हूं सात पुश्तों तक वली पैदा होंगे, कसम से कहता हूं। हदीस है कि जिस जगह बैठ के कोई मोमिन जिक्र करता है जमीन की सात तहें तक उसका नूर जाता है, जिस जमीन पे बैठ के कोई अल्लाह का जिक्र करता है आसमान वाले उस जगह को चांद और सूरज का चमकता हुआ देखते हैं, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है जिस की हम जमीन पे बैठे हैं, अल्लाह कहता है जब तक मेरा नाम लेने वाला कोई होगा एक एक یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ عرش، یہ فرش، یہ سب کچھ کاروبار اس وقت تک چلتا رہے گا ایک آدمی ہوگا، یہ مشین ویسے ہی چلے گی. سبحان اللہ، قیامت نہیں لاؤں گا. وہ گھر برباد ہو ہی نہیں سکتا، اس گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا جس گھر میں اللہ کا ذکر صحیح طریقے والا ذکر ہوگا، جس میں شریعت و سنت ہو. ڈرامے والا ذکر نہیں چلتا، شریعت و سنت ہونا چاہیے، وہ زندگی بن جاتی ہے انسان کی. فرمایا یا الذین آمنوا اذکروا، ذکر کرو. اچھا ذکر تو کرتے ہیں جناب، کتنا ہم کتنا کرتے ہیں کہ میں 100 ذکر کرتا ہوں، میں 1000 تسبیح کرتا ہوں، میں 500 کی تسبیح کرتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو، کیونکہ علاج بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جو ڈاکٹر کہتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے نا. یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا، ذکر ہی نہیں صرف بلکہ کیا کریں، ذکر کثیر کرو. اس سینس ہوگا کہ یہ میں نے 10 تصویر کر لی، 15 تصویر کر لی، 10 تصویر کر لی، 4 تصویر، تصویر رکھ دو. اللہ کہتا ہے تصویر سے میں ذکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کب کروں گنو؟ اللہ نے کہا گنو نہیں. کہا کمال دیکھیں، یہ رنگ آپ کو کسی عبادت میں نظر نہیں آئے گا. نماز کتنی بڑی عبادت ہے، فرض ہے بھائی، سارا کچھ تو نماز میں ہی ہے. روزہ، حج، زکوٰۃ سب پہ ٹھپے لگے ہوئے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں. بس 5 وقت آؤ، باقی چھٹی کرو، کام شام کرو اپنے، ویسے زیادہ مجھے ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافی ہے 5 منٹ، یہی کہتا ہے نا. آپ نے جانا 20 پڑتے ہیں، کہتے جوتے مارو 20 کے، جا کے بیوی کا کام کر، گھر کا کام کر، کمائی کر، 5 وقت کا چھٹی کر، بار کر، اپنا کام کر، دنیا میں لگ جا. دنیا کے کام کرنے ہیں آپ نے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، کاروبار چلانا ہے، سیاست کرنی ہے، ملکوں کو چلانا ہے، آپ نے سب کچھ کرنا ہے. تو مسجد میں بیٹھیں گے، اللہ نے آپ کو کہا، کسی مولوی صاحب کو نہیں کہا کہ بیٹھ جائیں مسجد، آپ حجرے کے اندر بیٹھ جائیں. وہ تو بی بی مریم بیٹھی تھی، ان کو کھانا آ جاتا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا. مولوی کو باہر کام کرنا پڑتا ہے، کسی حکم نہیں دیا ہے یا نہیں. حج بس ایک دفعہ ہو گئے کافی ہے، اللہ اس کو قبول کر لے، تو چھٹی لگائی جائے، اس پہ کیا ضرورت، کیا دنیا میں اور کام نہیں ہے آپ کو، اور بہت سے کام ہے. اللہ توفیق دے اس قابل ہو کہ سارے کاموں سے آپ فارغ ہیں، اور کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں ہے آپ کی، فلاں نہیں ہے، اور الحمدللہ اس معاملے سے ضرور جائیں. لیکن یہ حج کرنے کے بعد پھر وہی کام، پھر حج، پھر وہی کام، پھر حج، پھر وہی کام، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ حقیقت کو پہچانے نا آدمی. اللہ نے ایک دفعہ ایک حج کا ہے، کتنا کا ہے؟ روزے 30، زکات وہ بھی تعداد بس، اور جہاں ذکر ہے کثیر، اللہ کثیر کثیر. یہاں کوئی رعایت نہیں ہے کہ کام کرنا ہے پھر بھی کرنا ہے. اچھا جی بالکل کرنا ہے، یہ دکان پہ کہتا پھر بھی کرنا ہے، کہیں چھٹی، کہیں چھٹی ہے ہی نہیں، سو جاؤں کہتا پھر بھی. اللہ دینا یس کروں قیام وقعودوں والا جنوب، میں کون کہہ رہے ہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی چھٹی نہیں. اچھا جی پھر تصویر، تصویر رکھ دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کی تصویر، کس طرح کریے جناب، گاہک بھی آن گئے، گلا بھی ہوں گے، پیسے بھی دینے ہیں، لینا دینا ہے، سب کو بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، بات بھی کروں گا. سب سے کلوز تو جو آدمی تھک کے جاتے کس کے پاس جاتا ہے؟ ماں کے پاس جاتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے؟ اونچا بولیں، گھبرا رہے کیوں ہیں؟ بیوی کے پاس ہاتھ پھیرتے ہیں، ہاں بھی ٹھیک ہے، سیٹ بیٹھ. اسکول میں اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے نا، یہ بھی بہت سسٹم ہے، سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیوی وقت وہاں بھی کیوں کہ آؤ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، سبحان اللہ، کہ ان کے شوہر کیا کرتے تھے، وہاں ذکر کرتے تھے میرا نہیں کرتے تھے. اللہ کی محبوب کی محبوبہ ہیں، آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی. چلو دیکھیں مسجد میں ذکر کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں، لیکن یہ پوچھتے ہیں بیوی کے سامنے بھی ذکر کرتے تھے؟ ان کا بیوی کے سامنے رات کو بھی لیٹتے ہوئے ذکر ہوتا تھا ہم کو. کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتے ہیں، کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکرون علی کل اعیانہ، میرے شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام، ایک ایسی عادت شریفہ جو حضرت عائشہ کے صدیقہ کو جانتے ہی نہیں ہو، یہ تھی کہ آپ کے ایک لمحہ بھی آپ کا جو تھا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا. تیرا میرا तस्वीर चुपकी फिरते हुए पता नहीं कि तस्वीर करने अपने की करने होते चाहिए गाली उससे गाली निकलती है, एक हाथ में तस्वीर होती है, उधर टीवी देख रहे होते मैच क्रिकेट का, उधर तस्वीर चल रही होती है, उधर बातें मैं अक्सर मशीन देखा है बातें कर रहे हैं तस्वीर पकड़ी हुई और फिर यार तू किया तस्वीर बच सकते हैं। यही वजह है कि आज नाफरमानियों के हजूम है हमारे पास, हम बीमार हैं कि सुन्नत को छोड़ के म्यूजिक पसंद है हमें अल्लाह अकबर, कुरान को छोड़ के गाने बजाने पसंद है हमें, हया को छोड़ के बेहयाई हमें पसंद है, एक बेहतरीन खूबसूरत छुपा देने वाले लिबास को छोड़कर नंगे लिबास हमें पसंद है। तो बिल्कुल ऐसे एक जैसे एक डिश जिसके अंदर पखाना गू पड़ाओ और एक दूसरी तरह तो अच्छा खाना पड़ाओ, अच्छे खाने छोड़ के इंसान दूसरा खाना खा रहा हो, उस वक्त सोचते रहते हैं हम ये काम करें हम पागल हैं, फिर मैट वी नीड सम मेडिसिन फॉर दैट, गॉन दिमाग गया चुका है हमारा। तो अल्लाह इलाज बता रहा है बिल्कुल ऐसे इंसान हो जाओगे कि जो दुनिया की मिसाल ही बन जाओगे, तो इमाम गजाली बन जाओगे सुबह, क्यों यादीना उसको जिक्र कसीरा, ये बड़ा काम है फिर तक किसी चीज ये जिक्र है गिनते हैं तो वो कैसे, वो तो बड़ा जबरदस्त जिक्र होगा कैसे करेंगे, मिसाल दे दिया राशिद खाओ लम्बा अल्लाह का जिक्र होता था, राशिद से पूछते हैं कि वो कैसे करते थे अल्लाह के नबी से, हम भी वही करेंगे, हमने कसीर हुक्म आ गया कसीर का तो हमें बताएं, हम तो क्योंकि नकल तो आप ही की करनी है कि हम भी जिक्र करें काम भी करें दुकान पे भी जाएं घर पे भी जाएं बाहर के भी जाएं, यही जिक्र हमें करना है ना, ये तो करने तुमने हम तो कुरान का यही है, ये कैसे करें वैसे अल्लाह के नहीं फरमाते थे किसी को कैसे फरमाते थे कि उनका दिल नहीं सोता था, दिल हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता था, जबान खामोश हो जाती थी लेकिन दिल खालिब कभी जिक्र से गाफिल नहीं। तो पता ये चला हदीसों से और कुरान से कि असल जिक्र जो होता है वो किससे होता है, मुझे बोले दिल से। वो शेख जो आपके दिल को जिंदा कर दे, लतीफा रूह को जिंदा कर दे, लतीफा सिर को जिंदा कर दे, खफी सारे लताइफ जो आपके वजूद में ऐसे फड़क रहे अल्लाह 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 अल्लाह, तब पता चलता है शेख किया है कोई, शेख के पास जाते इसलिए है, अल्लाह वालों के पास जाने का मतलब यह है कि ऐ आगे जी कड्डो साढ़े सीने तो अल्लाह रखो अली फल्ला चंबेदी बूटी, वो क्या एक शेर है किसी शायर, मुर्शद दिल चलाई हो नफी स्वाद पानी रलिया जहां फलम तेरा आई हो। पहले जमाने तो मुरीद और शेख ऐसे होते थे, अब तो पता नहीं क्या बोझे, हाँ जी ठीक है अल्लाह तस्वीर कर ले उसकी तस्वीर कर ले फला कर ले ना इसलाई, और बेशक शेख बैठा हो शुमाल में और खुद बैठे हैं जनूब में, लेकिन ये कि नाम मशहूर है उनका जी, हम तो उनके उनके मरीद हैं, इसलाह हुई आपकी तो लतीफा चला आपका तो गुनाह खत्म हुआ आपका, शेख तो इसीलिए किया जाता है, ये सुन्नत है कुरान का हुक्म है कि किसी अल्लाह के पास जाके या हजरत थानवी फरमाते हैं कि फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन इसलाह कराना, ये ऑप्शंस नहीं है भाइयों, जन्नत लेनी है हमने कब्र के अजाबों से बचना है, और इतना आसान है रास्ता कि दीन भी मिलता है दुनिया में मिलती है, कारोबार बढ़ते हैं बिजनेस बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घरों में खुशहाली आती है, गाड़ियां बड़ी बड़ी आती हैं, ये गुरबत नहीं आती चीजें, ये अल्लाह की बरकतें लेकर आती है। एक सिस्टम पर चले आप, पांच वक्त नमाज हो, अल्लाह का जिक्र हो, फिर उसके मुताबिक जिसका शेख आपको मामला दे, इतना कुरान की तलावत करो, इतने आई करें, गुनाहों की लिस्ट हो, उसका कोई तस्किया हो रहा हो, कोई शीट चल रही हो, गुनाहों को जाकर पेश करता हो, हर हफ्ते मुलाकात होती हो, गुनाह निकालने का तरीका बताते हो, अल्लाह कहता साय मशकूरा, अगर तेरा गुनाह ना भी निकला हो और तू इस सुन्नत पे चलना शुरू हो जाएगा, जब तू मेरे पास आएगा तो तू पास साफ होगा, ये नहीं कि हमारे गुनाह निकल जाएंगे, कोई बात हम बिल्कुल गुनाहगार हैं, शैतान सब कुछ हमारे साथ चलता है, तो इसमें बेशक हम ना निकाल सकें, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, आप एक किसी अल्लाह वाले के पास गए हैं, उसके कहने के मुताबिक आप जाके मुजाहिदा कर रहे हैं, अपनी कोशिश से लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कहता है बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जहादू फीन अल्लाह सुबह अल्लाह कहता है बस तूने कोशिश शुरू कर दी, मेरी रहमत अब तेरे साथ चलना शुरू हो गई। फिर मैं देखता हूँ दाढ़ी कैसी इतनी जाती, दो आथम को इतना उठ, फिर वही दाढ़ी आएगी, इसे अल्लाह वाला को शेख मिले ना जिसके पास आप गए हो इस्लाह की नियत से, दूसरी कोई नियत ना हो, और वो बेशक चलना पड़े रोज आना पड़े आना, यानी ये बहुत दूर है, वहां तो इतनी दूर दिनों जिक्र होता है अल्लाह हुक्म, जहां सही इस्लाह होती है, मैं बताऊं आप जहां सही प्यासे होते हैं वह चश्मा 24 घंटे चलता है, जहां सही प्यासे होंगे वह नलका नहीं रुकेगा, अल्लाह ताला वहां चश्मा जारी कर देगा, लोग पानी पीते रहे क्योंकि यहां प्यासे हैं। याद रखना मेरी बात को, चश्मा वहीं चलेगा, वहीं से पानी निकलेगा जहां सही प्यासे होंगे। तलाश करें, जब नियत करेंगे अल्लाह से, मांग अल्लाह ताला मैं अपना इस्लाह चाहता हूँ, अल्लाह आपको देगा, ऐसा शेख देगा, ऐसी जगह देगा, अब वो तरीका देगा आपको जहां आपका नफ्स मरता हो, आना मरती हो, तकब्बर मरता हो, तवाजा आती हो, वो तवाजो नबी पखन की तवाजा आती, सुभान अल्लाह, नीचा नजर आता हो अपने आप को, कोई आदमी ऊंचा नजर ना आता हो, सबसे बदतर अपने आप को समझते हो आदमी, सब घमंड निकल जाते हो, शहवात निकल जाती हैं, ख्वाहिशात निकल जाती हैं, दीन का शौक बढ़ जाता हो, फिक्र आखिरत आ जाती हो, नोट गिनने का मजा ही खत्म हो जाए, तलावत कुरान में लुत्फ आना शुरू हो जाए, तहज्जुद पे उठना नसीब हो जाए, सीनों में कुरान है, तहज्जुद पे सोए पड़े, इसका जवाब देना ही पड़ेगा। मुझे बताएं, कोई मुझे दे दे मर्सिडीज गाड़ी, मेरा बाबा मुझे मर्सिडीज गाड़ी दे दे, बात नहीं, और एक महीने के बाद आया कि तूने चलाना, नहीं ये की चलाने टायर दोनों पंचर खड़े हो, गुस्से होगा या खुश होगा? तो अल्लाह ताला तेरे सीने में कुरान उतार दे, वो कुरान की जिस पे सारे फरिश्ते रश्क करें, जमीन आसमान रश्क करें, जिसको उसके सीने को जमीन ना खा सके, और वो जालिम कभी उठ के कुरान को तलावत भी ना कर सके तहज्जुद में। बस रमजान में खुलता हो मुश्किल से कुरान, हमने तरावी पढ़ा दी, उसका तो नींद ना आती होती, इंतजार करेगा सुबह का वक्त तो तीसरा पैर, मैं अपने कुरान को सीने से बाहर निकालूं, अल्लाह सुनने वाला हो, मैं सुनाने वाला हूं, इसको कहते हैं सब। बस शौक इंसान होगा कोई जो कुरान के साथ ये तमाशा करे, औरतों को भी दी है अल्लाह ने, मर्दों को भी दी है, शौक तो बड़ा होता है, मैं कुरान हिफ्ज करना चाहती हूँ, मैं कुरान हिफ्ज करना चाहता हूँ, उस कुरान को हिफ्ज करने के बाद संभालो फिर उसको, उसके साथ वही बर्ताव करे जो कुरान चाहता है। कुरान रात के वक्त चीखते है कोई, तेरे सीने में तड़प रहा हूं, आना बाहर निकाल, पढ़ना इस वक्त मुझे, सुभान अल्लाह। अब वो खराटा मारता है और मरती है, ये तो तू बहुत शौक करता था मैंने कुरान सीखना है, बहुत शौक करता है मैंने कुरान सीने लाना है, अल्लाह तुझे दीदे उठना पढ़ना इस कुरान को, रमजान जब पढ़ लेंगे जी तराबियां पढ़ा दें, वो तराबी जो पढ़ाऊ वो भी रिया वाली तराबी होती है, ये मैं आपको बता, मैं तो सीधी बातें करने वाला थी, वो भी रिया वाली तराबी, मेरी आवाज सुदेश से मिलती है, मेरी शर्म से मिलती है, मेरे फला से मिलती है, वो आवाजें मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता, मुकाबले चलते हैं। अल्लाह के बंदो सोचो से जिस तराजू पे अमाल जाएंगे वह इखलास देखा जाएगा कि ये अमल मेरे लिए था या किसी और के लिए था। क्यों है सब बीमारियां? याहिल्लज़ीना उसको ज़िक्रन कसीरा, कि हम जिक्र ही नहीं करते अल्लाह ताला कसीरी की दूसरी बात। आओ वादा करें अल्लाह ताला से, ये रात कीमती बनाओ, मैं एक ही नियत से आया हूं इस मजमे में और कोई मेरा काम नहीं है, मैं जो चला हूं बीमारी की हालत में आया हूं मैं आपके पास, एक ही गम लेकर आया हूं दोस्तों, एक दावत लेकर आया हूं। इस मजमे में जितने आदमी बैठे हैं आज अल्लाह की रहमत को समझते, हर आदमी जिक्र कसीर लेकर जाए। मैं मुरीद बनाने कायल नहीं, ना मुरीद बनाता हूं ना मेरे, मैं तो इस्लाही ताल्लुक के भागता हूं भाई, इतना मेरे पास काम नहीं है, और हैं बहुत से उनके पास हैं, लेकिन ये एक आम फैज दे रहा हूं आपको, किसी का कोई मुरीद हो, कोई किसी का शेख हो, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, आए आपको कल भी जिक्र सिखाता हूं, आपका दिल जारी हो जाएगा, बंद नहीं होगा, जब आप कहां है वो आपको बता देता हूं। यही मेरे शेख ने हुक्म दिया था, मुझे ट्रेन किया, फरमाया तहरीर दी के चप्पे चप्पे में जाके लोगों के सीने को गर्म करना है तुमने, और जिक्र आम कर दो, कसीर जिक्र दो, तस्वीर नीचे गिरा दो, उनके सीने चला दो अल्लाह के नाम से। सीखे हुए भाई हाथ खड़ा करो, शाबाश, डरने क्या बात है, मैं कोई पैसे ले रहा हूं आपसे, डर किस तरह से, आपने तो करना भी नहीं है, आपने तो कुछ करना ही नहीं है, जबान कुछ नहीं कर रहा, तो सो रहे हैं, करेगा कौन आपकी तरह से जिक्र, कौन करेगा, दिल दासा लगा हुआ यार, यानी अल्लाह ने इतना आसान किया ये काम जहन्नुम से बचाने के लिए, बच्चा तूने तो करना ही नहीं, तू खा रोटियां खा चूजे खा, तू बिरयानी खा, तन के नहीं रोके लाए तो सही जिक्र, ना तो नहीं लेना है, लेकिन मजे तू करेगा जन्नत से, बरकतें तू लुटेगा, घर तेरा आबाद होगा, दुकानें तेरी चलेंगी। अजी फिर तो बड़ा मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं, वो है जिक्र, इसलिए सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है ना माँ के पेट में, टांगें, जिगर, कितनी चीजें हैं। अब मैं मेडिकल आपको बताना शुरू करूं तो हैरान हो जाए कि आंतों का हिसाब क्या है कि यहां से खोलें तो मैं कहा जाके इस्तांबुल में जाकर खत्म हूं, इतनी लंबी लंबी आंतें हमारे पेट में। आंखों का देखने के आपकी डॉक्टर पूछे आंखें क्या है, दुनिया आपको नजर आएगी आंखें हैं क्या। ये सिस्टम है सर अल्लाह ने दिया है कि इंसान सोच नहीं सकता। सब सिस्टम से पहले अल्लाह पाक क्या चीज पैदा करता है बच्चे के अंदर, अगर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं बताएंगे आपको, सबसे पहले वो चीज पैदा करता है जो जिक्र करने वाली चीज, जो अल्लाह को पहचानने वाली चीज है। वो क्या चीज है? दिल। जब स्कैन होते हैं ना कहते हैं हाँ जी दिल बन गया, इसका दिल का सबसे पहले दिल बनता है, लोथड़ा होता है वो, मकदा मुद्दे पुराने पूरी आयत है वो बनते बनते, लेकिन अल्लाह सबसे पहले चीज को पैदा करता है। और हम जब बड़े होते हैं तो सबसे पहले जिस चीज को हम मारते हैं अपने जिस्म में, दिल को मारते हैं, उसको खुराक नहीं देते। आपका दिल जिंदा है, अल्लाह तो वो हदीस है कि सिर्फ जिंदा वो लोग जो जिक्र करते हैं। फर्क ये है मिस्र जो मिस्र मौत और हाई के अंदर जो मिसाल बताई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है? जिक्र करने वाले और जिक्र करने वाले लोग सुनते हैं हम, ये तालीम में भी जिक्र सुनते हैं, हम जमात में बैठ के जाते हैं, ये भी बहादुर सुनते हैं, असर नहीं होता कि जाके जाए यहाँ पे अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जिक्र सिखा रहा है। नहीं नहीं नहीं, इधर क्या जाना, छोड़ो छोड़ो हमारा मकसद अल्लाह के बंदे, इतनी अकल नहीं है इतनी, हम तो सोचने वाली बात है जब तुम पढ़ते क्या हो कुरान में, ये कौन सी क्लासिफिकेशन लिए दीन के अंदर, ये नहीं तो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। बताओ किनका काम है, ये किसका काम हो रहा है? मैं यहां जिक्र आया, मेरा काम है, आप जिक्र सीखें, ये आपका काम है। जिक्र ये अल्लाह कहता है ईमान वालों काम है। अगर ईमान होगा तो यहां एक और चीज सुन लें, अल्लाह ताला ने इस आयत में एक बात कही है, जिक्र और ईमान का दोनों का ताल्लुक है, याद रखें, इतना गहरा ताल्लुक है, जहां ईमान होगा वहां जिक्र होगा, जहां जिक्र होगा वहां ईमान होगा। वो ईमान जो जिक्र से खाली है वो अजीब ईमान होगा, याद रखें, वैसे ईमान होगा हर गुनाह के पेड़ में होगा। और जिक्र कौन सा होगा, ऊंचा बोलना हो जो कुरान कह रहा है, कौन सा? तस्बीह वाला नहीं, 10-15 नहीं, कौड़ा जिक्र, दिल वाला, दिला से की करना पड़ता है, किसी शेख को जाना पड़ता है, जरा नफ्स पंजी, मैं आलिम वो ये, मैं तो फला वो ये, मैं फला, ये नहीं बता, जो कुछ भी है मैं तो कुछ भी नहीं। इस मज में वो कामयाब होगा इंसान, याद रखना, जो सबसे बदतर अपने आप को समझे, जो इस मजमे में आया है उस क्या कि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, मेरी गुनाहों की सजा से सारी दुनिया जो आज मर रही है, और दिल से कहता हो कि अल्लाह ताला मैं ही गुनाहगार हूं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्लाह ताला बुलंद करके निकाल देगा। बड़े अन्या कर तकबर कहां चलते हैं भाइयों, मैं ये मैं वाली फिक्र नहीं चलते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं निकालो, झुक जाओ, जिसके पास जो चीज है हासिल करो, ये नहीं, ये तो शिर्क है, ये तो शेख आप आदमी को पूछते हैं, नहीं जी मेरा शेख नाराज हो जाएगा, मेरा शेख क्या करेगा, उसके पास जिक्र सीख लिया, तो इसको शेख कर रहे हैं आप, आदमियों को पूछ रहे हैं, आपको एक इतनी बड़ी चीज मिल रही है किसी अल्लाह वाले के पास, आप इससे समझा नहीं जी हम तो अपने शेख को नाराज करें, हम क्यों उधर जाए, कोई शेख किसी का नहीं है, जो अल्लाह का रास्ता बता दे वही सबसे बड़ा शेख। क्यों नहीं दिया फिर आपको अभी तक जिक्र, क्यों पहुंचे नहीं इस मुकाम तक, आपकी लताइफ क्यों जिंदा नहीं है, शयातिन के गलबे क्यों है, हरामकारी क्यों होती है, गुनाह क्यों होती है, कोई दे साबित कि गुनाह नहीं मैं करता, क्यों रिया अंदर है, क्यों तकब्बुर है, क्यों बनावटें हैं, हर गुनाह बहुत ही गंदा है। मुझे बताएं गुस्सा नहीं आता, आता है गुस्सा हमारा फख्र है, और मैं आज अपनी बीवी ने गलियां कटी, मैंने बड़ा गुस्से आने रोटी सही नहीं बनाई सी है ही रोज नहीं, मैं गया मैं देखा जी तो कम नहीं कर दी, मैं उन्हें झाड़िया जी पड़ गए, पंजाबी समझते हैं फारसी समझते हैं, बातें समझ आ रही है मेरी, क्यों मैंने बड़ा गुस्सा है जी, सीधी रोटी नहीं बनाई मैंने, मैं जनाब लाइन से खड़े बंदा आगे मेरा आ गया, मैंने बड़ा गुस्सा, मैं चंडे मारे बड़ा गुस्सा आदमी भाई, गुस्सा तो यह हमारे, मैं अंदर आते मुझसे धक्का लगा, पता नहीं मैं कौन हूं, हजरत साहब हूं, धक्का मार दिया इसने, वाह जी वाह बड़ा गुनाह कर दिया, तो आप तो हजरत साहब थे, मैं हजरत साहब आ गया था मुझसे आगे ही जा रहा है, ये मेरा मुझे तो आगे शर्म नहीं आती, इसको कहेगा नहीं पत्ता काट देगा उसको। बहुत सी बातें करता हूं, माशरे की बातें कर रहा हूं, कहते मैं डिजर्व करता हूं इस कुर्सी में बैठा, मैं तो हया शर्म से मर जाते आदमी की, इतने लोगों को तकलीफ कैसे दी जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसका जवाब देने नहीं होगा, देगा नहीं जवाब आदमी, तू कौन है बंदे के पुत्र, जगह वहां बैठ, तू लोगों क्यों लाते फिरते, जहां तू है बैठ जाते आराम से। हाँ अगर भाई मजमा जहर ही तो अदबी तो अदब है ना, फिर मजबूर होते हैं ना आदमी, खुद ना इंसान के अंदर ही शौक हो, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे इंसान का क्या करता है कि दिलों के अंदर इंसान की रिस्पेक्ट पैदा कर देता है, उनको बर्दाश्त नहीं होता, बेअदबी समझते हैं, फिर उनका अदब मजबूर करता है कि हम भी हमसे गवारा हो नहीं सकता, ये एक दूसरी कसम हो जाती है। लेकिन खुद आदमी डिमांड करे चीज का, मैं आऊं तो खड़े हो जाएं, मैं आऊं तो बैठ जाओ, मैं आऊं तो झुका लो हाथ, मैं आऊं तो फरा करो, एक तो ये डिमांड है, एक ये है कि अल्लाह उन आदमी को कह रहा है कि मेरा दोस्त है खड़े हो जाओ, जरूरत कैसी तू खड़ा ना हो, ऐसा जर कर इंसान के अदब का तो हिल जाए कि नहीं मैं तो कर नहीं सकता, ये अदब और होता है, एक होता है अदब कराना, एक अल्लाह की तरफ से अदब आना, दोनों बड़ा समझे भाई। तो अल्लाह कहता है या कसीर जिक्र सीखो, फिर क्या हुआ यूसली लायक मलायक, तो वादा कर रहा है सबसे पहले इनाम बताया अल्लाह ताला ने कि जब तुम कसीर जिक्र सीख लोगे, जैसे आज आपने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, सीख के जाएंगे, वो मुतकब्बरी होगा जो सीख के नहीं जाएगा, जिसके जहन में अभी तक उतना ही नहीं होगा, भूत होगा जो कुछ हो जाए मेरा जिक्र करना ही नहीं, पिछले कुरान में नाजिल हो गया सुन लेता, लेकिन मैं नहीं करना जी, मैं तो सही जा रहा है बिल्कुल ठीक हूं, मेरे से है ही नहीं गलती, वो और बात है, फिर भी यही कहता था अबू जहल भी यही कहता था। आई डोंट थिंक कोई आदमी इतनी बातें सुनने के बाद बगैर जिक्र ही यहां से चले, देखो बुढ़ा तो जा ही नहीं सकता है, उसके तो वैसे ही फाइल पे साइन होने वाला है, किस्मत बनी नहीं है आज, ये किस्मत बन रही है। तो लगता क्या हुआ लजी यूसली अलैक वो मलाइक, तो किस तरह शाह किया कि जिसका तूने जिक्र किया है, सुभान अल्लाह, ये भगवान का जिक्र, राम का जिक्र, किसका हो रहा है, सब कायनात का जिक्र कर रहे हैं, तू नाम ले क्या ले रहा है, बिस्मिल्लाह नाम अल्लाह, उसको नहीं पसंद कादिर रहमान है, कहता ये छोड़ो वो सीधा वाला ना लो अल्लाह अल्लाह, सीधा हुआ खड़काओ मेरा है कोई ऐसा बताओ, जिन्होंने अभी मोजम मुतम जनाब कबला काबा ये करके बाद बादशाह सलामा, तो ये नाम को ले सकता है उसका, अल्लाह कहते हैं मेरे साथ ड्रामे ना कर, मैं कादर भी हूँ, वाजिब भी हूँ, माइन भी हूँ, माइन भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन जब तू मेरा दोस्त बन गया तो मेरे नाम से बुला, तू मुझे अल्लाह कह, मैं तुझे आसिफ कहूँ, सुबह दोस्ती तो फिर हुई ना, सुबह अल्लाह की पुकार हो, मुझे एक वाकई याद आ रहा है, सुना दूंगा आपको भी, इसी पर मुझे वाकई याद आ गया। मालिक बिन दिनार के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, क्या नाम है ऊंचा बोले, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बकराम जानते होंगे हदीसों से वाले से, उनके साथ उनका उसी जमाने के बहुत बड़े वली थे जाफर बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह, जा रहे थे तो देखा जनाब उन्होंने कि जवान है खूबसूरत हसीन अमीर कभी इंसान है, जैसे हमारी मर्सिडीज खड़ी होती है तो उसकी खड़ी चीजें काफी, और महल बनवा रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं, महल पैलेस बन रहा है उसका, यहां ये लगाएं, यहां ये लगाएं, इसको ऐसा करें, ये कमरा खास होना चाहिए, तो दोनों दरवेश बैठेंगे, बैजा बैठे दोनों बैठेंगे, बड़े मुझे दरवेश बैठेंगे, देखो तमाशा करता है क्या, वो लगा इंस्ट्रक्शन देने, यहां ये कमरा होगा, यहां ऐसे होगा, ये बालकोनी होगी, ये फला होगा, महल बन रहा है भाई, इतने को बहुत खूबसूरत मजदूर लगे हुए, धड़ाधड़ काम हो रहा है, देखते रहे, फिर उठे मालिक बिन दिनार, सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम, क्या बात है, मसरूफ है, पहचाने जवान, कहते हैं मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे, टाइम दें थोड़ा सा मुझे, कहते हैं बताएं, जब उन्होंने बात शुरू की तो समझ गया कि मालिक बिन दिनार है, अल्लाह की पहचान हो ही जाती है इंसानों को, भाई ये तो भी खुशबू कुछ और है इसकी, तो किसी ने आंख मार दी को पागल, तो वो मालिक से आ रहे हैं कि खैर से बात करना, वो चल रही है, जनाब हजरत फरमाए क्या बात, चाय पानी की, चाय पानी छोड़ा, एक बात करना है तुझसे, जी कहते ये महल किसका है, कहते मेरा, रहना किसने, कहते मैंने, ये पसंद किसकी जी मेरी, सुभान अल्लाह, तू रहेगा इसमें, कहते मैं रहा हूँ, कंप्लीट कब तक हो जाएगा, कहते बड़ी जल्दी हो जाएगा, बहुत मैंने मजदूर लगाए मैं इसमें, कहते अच्छा, कहता ये कितने की खर्चा रहते रहा इसमें, अल्लाह वाली बातें सुने, कहते खर्चा तेरा कितना आ रहा है इसमें, कहते खर्चा तो मेरा आ रहा है इस पर जनाब 100,000 धरम, बड़ों को दीजिए 100,000 धरम, जैसे हम कहना 10 करोड़ का ही मकान बन रहा है, कोठी बन रही है, मतलब कोठी बनती पाई है, कोठी कहते ना मकान नहीं कहते, वो पता नहीं क्या फर्क है कोठी और मकान, आज तक ये समझ, अच्छा 10,000 1,00,000 दी कोठी। अच्छा तो ये कहता यार ऐसा करो जी क्या करो, कहते 1,00,000 मुझे दो ना जी, आपको कहां मुझे दे दो, आप क्या करेंगे, कभी सदका कर दूंगा सारा। बोलो सुभान अल्लाह, बात सुन रहे हैं सो रहे हैं, सुन रहे हैं सुने फिर कहते जी मैं आपको दे दूं, हाँ मैं ही मांग रहा हूँ किसको, दूसरा तो नहीं ना मांग रहा, ये तो मेरे साथ मेरा दोस्त है जाफर सुल्तान, इसको खुद पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, फिर आप क्या करेंगे तकसीम। इस मांस पर अजीब सो गई, मुझे क्या मिलेगा, कहते मैं बताता हूँ तुझे क्या मिलेगा। अब दरवेश के साथ गुफ्तगू सुने, कहते ये जो तू महल है इससे 10 गुना बेहतरीन महल मिलेगा, उस महल के अंदर लौंडियां होंगी, गुलाम होंगे, अल्लाह ज़मरद याकूत के मलबे होंगे, कोबे होंगे, हर कमरा डेकोरेट होगा, उसमें हूर बैठी होगी, बोले सुभान अल्लाह। और जनाब अल्लाह जो तू चाहेगा उसमें खाने वाले भी तुझे मिलेंगे, हर वक्त तेरी सर्विस चलेगी और किसी किस्म की तकलीफ, और दाई में होगा ये तो अभी शीशे टूटेगा, मक्खी आएगी, गर्द आएगी, गुबारेगा, वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगी चमक उसकी, और हर ईंट जाफरान की उसकी होगी, मुश्क की ईंट होगी। देखते रहो कितने 1,00,000 में, हाँ 1,00,000 में सोचो, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, सोचना मेरी बात किस बात पे, याद आ गई मुझे बात। एक रात तो दे दें मुझे, मैंने तो रात नहीं देनी आपको, मैं तभी फर्दा करूंगा आपसे, तकलीफ दे दें कहते ठीक ले ले रात, मैं भी साथी ठहरता हूँ मस्जिद पे, तू भी ले ले मैं भी ले लेता हूँ। और जाफर नहीं समझ सके क्या ड्रामा चल रहा है, चले गए मस्जिद में, कहते जाफर जल्दी उठने जाने उसके पास, देखते हैं क्या सोचे उस रात को। खैर जुम सही रात दुआ की, अल्लाह इस आदमी को हिदायत दे, अल्लाह वालों की क्या शान होती, अब से अपने से ज्यादा सब आराम छोड़ा, सफर छोड़ा, उसकी हिदायत का फिक्र पड़ेगा। और पागल है सफर करते फिरे उन्हें कुछ मिल जाए ना, किसका जरूरत क्या उनको सफर करने की। लेकिन हमें दुनिया इंसान का बहुत बड़ी चीज है, अच्छी बनावट नहीं होती इसमें, जब अल्लाह ताला किसी आदमी को पसंद करता है तो उसके दिल में अपने मखलूक की मोहब्बत पैदा कर देता है, और इतनी पैदा कर देता है, इतनी पैदा करता है कि बच्चे औलाद सब उसे नीचे हो जाते हैं, ये बच्चा बीमार है जा रहा है, वह छोड़ मुझे जाने दे यार मैं जरा चक्कर कराऊ, वो सब हैरान होते हैं कि चक्कर क्या है, ना बीवी ना बच्चे, रिश्तेदार आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, वो ये कहीं भागा जा रहे हैं, वो मजबूर होता है, ड्रामा नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में मखलूक की मोहब्बत बढ़ चुकी होती है। वजह कि जिससे अल्लाह प्यार करे तो बंदा उसे क्यों ना प्यार करे, मोहब्बत तो यही है। अगर आपसे किसी से मोहब्बत होगी तो आप हमेशा उस चीज से प्यार करेंगे जिससे आपका महबूब प्यार करेगा, मिसाल के तौर आपके महबूब को गुलाब पसंद है तो आप कभी चमेली को पसंद नहीं करेंगे। सुभानअल्लाह, सारे सहाबा कराम को वही चीज पसंद थी जो नबी पसंद थी, सवाल ही पता पसंद, उनकी पसंद बन जाती थी। आप ये देख लें कद्दू, जिसको कहते हैं कद्दू शरीफ, एक सब्जी है, क्या कीमत है सब्जी की, हजारों सब्जी हैं, अल्लाह के नबी ने उसको चटाड़ा सालन के अंदर, क्या क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, सारे सहाबियों की जान बन गई वो सब्जी, और अदब से खाते थे उसको। सुभान, क्योंकि अल्लाह के नबी ने पसंद किया, जब उनको पसंद किया तो हमें पसंद किया, ये मोहब्बत की निशानी होती है। अल्लाह के नबी को दाढ़ी पसंद है और हमें क्या पसंद है, रोज शेव मार के दूसरों की नकल करना पसंद है। फिर कहते हैं आशिक रसूल ते पते क्या क्या, ते मैं जनाब गया मदीना ते मैं सलाम पढ़िया जनाब ते गुम्बद शरीफ ने ऐ देखा ते ऐ झूठ ड्रामे सुनने उनके और शक्ल देखें किससे मिल रही उनकी, बोले अस्तग़फ़िरुल्लाह हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसे आशिक बनने, ये आशिक है। मैंने आपको मिसाल दी है सिर्फ एक सब्जी की, ये तो वो मिसाल है कि जिसके लिए तो अल्लाह के नबी ने कहा है मन दगा बस सुनते फिलहाल साहब, जो मेरी सुन्नत से नहीं आता, सुन्नत की पसंद नहीं करता, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो जिसने यही दुनिया में कह दिया तो वहां बचेंगे कैसे, शफात कौन करेगा हमारी, तौबा करते हैं सब भाई डाड़ी से, यहां ही जाना है, तौबा करते हैं नहीं, ये छोटी चीजें नहीं है, ये तो फैसले आकर थे हैं भाइयों, ये दीन है। लेकिन हम जिक्र नहीं ना करते, हमारे दिल से इनकी वक़्त निकल गई। तो कहने लगे दुआ की उनके लिए, अल्लाह इसको हिदायत दे। अब गए सुबह बैठे, वो पहुंचे तो उनसे पहले वो बच्चा बैठा हुआ है, लड़का जवान, कहती देर से आए आप तो, सुभान अल्लाह लग गया करंट से बंदे को तो भाई सही लगे। कहता ले आया पैसे, कैसे मांगे ले आया पैसे, रात क्या की थी, कैसे मैं फिक्र सुख भी नहीं की थी, मैं जरा पैसे गिन के तैयार कर रहा था आपके लिए नोट बना रहा था, 1,00,000 पूरी निकले इंशाल्लाह। ये 1,00,000 ये पढ़े जनाब मालिक साहब, कहीं यहाँ पढ़े कि जी ये पर्चा और पेन यहाँ पढ़ा जाए लिख दें बोले सुभान अल्लाह या तहरीर दे दें, बात तो फिर जब ही होगी ना जी, गलत बड़ी ऊंची की है वो तहरीर तो दो ना सामने, ये पढ़ा कलम ये पेंसिल है जनाब लिखना है इस पे मालिक साहब। अब मेरा जैसे कोई कहते यार यार तो नहीं ना पैसे लिखवा लें तुम क्या करने लगे हैं, मेरे तो यकीन नहीं, हम ले आओ आगे लाओ ना कलम दुआत पक्की लेके आ करता मोड़ लगेगी मेरी इंशाल्लाह। उठाया कलम दुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इला मालिक बिन फला 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 नाम लिखा अपना, मुखातिब किससे बादशाह से, बादशाहों के बादशाह से, रब्बे खालिक से मुखातिब हो रहे हैं कि अल्लाह ताला मालिक ने इस शख्स से जमानत दे दी है जन्नत की और महल की, महल की मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दी है, उसको महल का भी बता दिया है, यकीन देखें अल्लाह वालों के, महल की डिस्क्रिप्शन दी है, महल भी बता दी है, कमरे भी गिरा दिए हैं, मालिक ने बता दिया मैंने जमानत दी है, अब तू रब इसको अता फरमाएगा तो सिर्फ इतना ही नहीं तेरी शान के मुताबिक इसे ज्यादा अता फरमाना, और मैं ये भी उसी नजर रखता हूं तुझसे कि सिर्फ ज्यादा ही नहीं होगा बल्कि तेरे क्रूब में वो महल होगा। बने सुबह ठप मोर सी ये ले पर्चा कहते ठीक है ये ले 1,00,000 खत्म, मकान बंद हो गया चले गए, वक्त गुजर गया। एक सुबह वो नमाज पढ़ के उठ रहे थे तो देखा जिस तरह है आपका नंबर है उस पर एक पर्चा रखा है, तो वो पर्चा वैसी था जैसे उन्होंने उसको लिख के दिया था वापिस है मालिक बिन दार, वो पर्ची को उठाया तो अब इस पर्ची पे जवाब किसका था, अल्लाह का था, अल्लाह भी लिखता है। मैंने कहा ना कि आप अल्लाह गए वो आपको नाम से बुलाएगा, नाम से बुलाएगा, अल्लाह कहता तुम दिल में याद करेंगे मैं तुझे दिल में याद करूंगा, अल्लाह तू बनने जाके जाके याद करेगा तो मैं भी तुझे आसमाने पे याद करूंगा, तो बनने में लोगों मजमे में जमा के याद करेगा मैं अपने फरिश्तों में तुझे याद करूंगा। अब वो याद कर रहे हैं हमें अल्लाह सच नहीं, सच नहीं कहता अल्लाह पता है तुझे सब कुछ अल्लाह ने कहा है, तू बन ले जा ठीक है जा, मैं भी तेरे साथ साथ अपना काम करता हूँ, मेरे फिर मैं भी अपने फरिश्तों को जमा करता हूँ, मेरा एक पोस्टर निकलता है अंदर। जिस इंसान ने भी इस मजमे के अंदर जितना हिस्सा लिया होगा मैं आपको बता दूं आखिर तुम उसका इनाम वो खुद देख लेगा क्या मिलता है उसे। इसमें जात अल्लाह का मजमुआ है, जो आया रंगा गया, जो बैठा रंगा गया, जिसने कुर्बानी दी वो रंगा गया, जिसने इसका तमाम किया वो रंगा गया, सुभान अल्लाह इसका तसव्वुर भी आदमी नहीं कर सकता। अजीब चीज है भाई, तो अजीब मजमुआ है। ये मिसाल दे दी मैं आपको ये बाकी सुनाया, पर्चा पढ़ा उस पर लिखा था इन जानिब अल्लाह सुभान तआला सुभान आगे मजमुआ है कि तू जिस चीज का तूने जिस चीज की जमानत ली थी हमने तेरी जमानत को पूरा कर दिया, अल्लाह हमने उसको महल भी दे दिया, वैसे ही महल दे दिया जैसे तूने कहा था लेकिन उससे 70 गुना ज्यादा दे दिया। पर्चा पकड़ा हाथ में, जवाब आ चुका था, चलो मैं इस बात आदमी के पास चलता हूँ, सफर किया। जब वहां पहुंचे देखा जाओ कुंडी खड़काई जवाब कोई नहीं, फिर खड़काई तो रोमों की आवाज आ रही है घर से, चीख बुखार थी हल्की हल्की, कुछ भी क्या बात है जी बंदे का इंतकाल हो गया, कहां महल बन रहा था कहां देखा तो बिल्कुल कच्चा मकान था, कच्चे कोठी नहीं थी कच्चा मकान था, बिक गया था ना बस वहां, कहते बिक जाता है इंसान जब अल्लाह के दोस्ती करते हैं तो बिक जाता है। जैसे आज आप कहेंगे हमने हराम नहीं करना, हमने गैर शरी काम नहीं करना, आप बिक गए, आपका जाहिर बदल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, फकीर बन गए हैं लेकिन आपका बातिन इतना अमीर हो गया कि बादशाह बन गए हैं। चीज सौदे होते हैं, हम इससे घबरा जाते हैं यार दुनिया कह गएगी या इतना सिंगा कपड़ा पांदा सी गड्डी सी तो आप दुनिया कह गएगी तो बस वो कहाँ बिक सकते हैं, तो कब्र की मिट्टी में घूम जाते हैं, कीड़े इनके जिस्म को खाती है, लोग दबा देते हैं क्या बिकते हैं, क्या आखरत है हमारी, मुझे पता है बड़ी बड़ी क्वालिटी अल्लाह दी होती है, किसी इलम की क्वालिटी कुरान की हदीस की कैसी कैसी क्वालिटीज दी होती है, सबको बर्बाद कर देते हैं, सबको बर्बाद कर देते। सोचा देखा انہوں نے کہا بھائی کوئی آدمی ہے جس نے جنازہ ان کو تیار کیا کفن دیا؟ وہ آدمی کہا جی میں نے نلایا ان کو. کہتا بھائی یہ تو بتاؤ میں مالک ہوں. کہتا اچھا مالک صاحب جی. کہتا یہ بتاؤ کہ تم نے نلایا کہا تمہارے سامنے موت ہوئی؟ کہتا ہاں. کہتا کیسے ہوئی موت اس کی؟ بولے سبحان اللہ. کہتے جی موت ایسی ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے موت کے وقت ایک پرچہ مجھے دیا تھا اور کہا کہ جس وقت مرنے لگوں میرے کفن میں اس پرچے کو ڈال دینا, میں نے اللہ کو دکھانا ہے پرچہ. میں نے پوری زندگی لگائی ہے سب کچھ دے دیا میں نے اللہ تعالیٰ. تو اس نے کہا کون سا پرچہ ہے؟ کیسا پرچہ تھا؟ جی پرچہ تو چلا گیا. انہوں نے اپنی جیب سے پرچہ کیسا؟ بالکل یہی پرچہ تھا جی جو آپ نے جو پرچہ دیا تھا اسی پرچے پہ اللہ نے جواب دے دیا. اس واقعہ اب یہ سننے والی باتیں آگے سن لیں, یہ قیمتی چیز آپ سمجھ جائیں گے. وہاں بھی لوگ سن رہے تھے دو تین آدمی, تو اس میں ایک جوان اٹھا کہتا اچھا یہ پا میں ایک دم جیب سے کہتے یہ 200,000 درہم لے جی مجھے بھی لکھ دیں سبحان. بولے سبحان. جواب کیا تھا؟ کہتا وقت آیا تھا اس چلا بھی گیا پاگل. یہ ہر روز کی کہانی نہیں ہوتی, تو ایک وقت ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا جن کو بخشوانا چاہتا ہے وہ مجمع لوا دیتا ہے. ہر وقت یہ کام ہوتے ہیں. بتاؤ ہر وقت آپ کی مسجد کتنے سال ہو گئے مجھے بتائیں. حوصلہ آپ کی چیزیں ہوں گی, کبھی ایسا اللہ کے ذکر کا رنگ جمع ہے آپ کی مسجد میں؟ بہت مشکل ہوتا ہے دوست, بہت مشکل ہے. یہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی نکل جاتے ہیں. کہ کس کا کسی باب تو وقت تھا گیا گیا فقیر نے ہاتھ اٹھایا. واقعی اللہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایسے درویش ہوتے ہیں پھٹے پرانے, لیکن ہاتھ اٹھا دے تو ہم قسموں کو پورا کر دیتے ہیں. پڑھے لکھے آدمی تو ایسے تو نہیں تھے. اور کیوں کہا انہوں نے سب کچھ؟ کہ قرآن نے سب کچھ کہا ہے. تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ وقت تو چلا گیا دوست, اب تو مجھے پیسے کیا گنائے گا؟ وہ تو گیا جو ہونا تھا, جو لے گیا لے گیا, لیکن ابھی وقت خالی نہیں ہوا کہ جو تو اس بات پہ تو یقین کر دے جو میں نے پرچے پہ لکھا ہے, جو اللہ نے جو پرچہ دیا ہے اپنے حبیب کے ہاتھ میں تو اس پہ یقین نہیں آیا. نہیں سمجھے بات؟ کون سا پرچہ دیا ہے؟ قرآن حکیم دیا ہے. اس میں یہ باتیں ساری نہیں ہیں کہ تو یہ کام چھوڑا. میں اللہ نے وعدے نہیں کیے جنت کے, اللہ نے جنتوں کے وعدے نہیں کیے. کہتے اس میں کیے تو میں نے ایک بات ہی کی ہے نا, وہ تو روز کرتا ہے بات, روز بات ہی اس میں موجود ہے. تو میرے بھائیو آئیں مل کے اللہ کا ذکر, اور انشاءاللہ ذکر کے بعد ہر آدمی بتاو دیتا ہوں کہ ذکر قلبی سیکھ کر جائے کثیر ذکر. صرف ایک سیکنڈ لگے گا آپ کا دل انشاءاللہ اللہ اللہ سے کرنا شروع ہو جائے گا اور ذاکر ہو جائیں گے. کوئی پیری مردی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. فی اللہ اللہ کے نام پر میں آپ کو یہ ذکر دوں گا انشاءاللہ. جیسے بتاؤں اس ذکر کو آپ کریں انشاءاللہ زندگی کے اندر آپ تبدیلی دیکھیں گے جب اللہ کا نام سینے میں اترے گا. بالکل نہ سو گھبرائیں, پریشان نہ ہو, ذکر سیکھ لیں. مجمعہ اس لیے لگایا, آیا میں اس لیے ہوں, باتیں ساری ذکر کی ہوئی ہیں, قرآن نے شہادت دیتی ہے. لیکن اگر ہم اس میں جائیں گے تو بہت ناشکر ہوں گے. پھر اپنی اپنی قسمت ہے, الحمدللہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم ذکر کرتے ہیں. ذکر دو قسم کے ہوں گے, پہلے جہر کریں گے, اس کے بعد یہ مراقبہ کریں گے جو میں نے آپ کو سکھانا ہے. ذکر قلبی ہوگا انشاءاللہ, اور اس کے بعد دعا کریں گے. چل پڑیں گے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جبی المرسلین طه یاسین حبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واشرنا في زمرتي يا كريم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقت حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقت حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقت حاجاتنا يا دافي البلايات ادفع بلاياتنا يا دافي البلايات ادفع بلاياتنا يا دافي البلايات ادفع بلاياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اللهم اعفنا في بدني اللهم اعفنا في سمي اللهم اعفنا في بصري اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم نعوذ بك من العذاب القبري وعذاب جهنم وفتنة الماي والممات وفتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کو اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.